अब अगली आयतों के शुरू में लिख लीजिए, दूसरा सद्दे जराए जिना, जिना को रोकने का दूसरा दरवाज़ा। पहला क्या था? इस्तेज़ान, इजाज़त तलब करो बगैर ना जाओ, और अगर कोई इजाज़त ना दे तो फिर चले जाना चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या आ रहा है, जिसको हम दो तरह से देखेंगे, एक मर्दों के निगाहों से, मर्दों के लिए जो अल्लाह ताला ने बोला, और फिर उसमें औरतों के लिए। आइए देखते हैं आयत नंबर 30। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी नज़रों को नीचा रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये इनके लिए बहुत पाकीज़ा तर है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है इससे जो वो करते हैं। इस आयत से पहले तो एक गलतफहमी का इजाला हो गया कि पर्दा सिर्फ औरतों का नाम है। हमारे यहाँ लफ्ज़ पर्दा जहाँ आता है वहाँ काले रंग का बुरका या निकाब, और इसी तरह से पहले दौर में बुरके के ऊपर जो एक पर्दे की सूरत में अटका लिया जाता है वो आता है, और चूँकि वो आता है तो हमारे जहन में आता है कि पर्दा तो सिर्फ औरतों का नाम है, औरतें पर्दा करें। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला की कुरान की तरतीब इतनी खूबसूरत है कि इसमें कोई चीज़ भी इधर से उधर नहीं, पहले बात मर्दों की गई। और आप देखिए कि नबी सल्लम से कहलवाया गया, यही अंदाज़ हमें अगली आयत के शुरू में भी दिखेगा, जिससे क्या पता चलता है कि इज्जत दी गई है। एक डायरेक्ट हुक्म मिल जाए वो भी बड़ी बात है, और बहुत सारे हुक्म ऐसे ही हैं कुरान पाक के, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे के मज़मून पर लेकर आना बीच में, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए से ये हुक्म दिलाना चाहता है कि हुब्बे रसूल का दावा करने वालों, तुम अपने नबी की बात को मानो। और यही चीज़ आप सूरत अल अहज़ाब में दोबारा पढ़ेंगे कि जहाँ भी ये मज़मून आता है बीच में अल्लाह के नबी सल्लम को रखा जाता है। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ ईमान वाले मर्दों की बात है। असल चीज़ ईमान है। ये बातें जितनी अब हम पढ़ने लगे हैं, औरतों की हों या मर्दों की, समझ उसको आएंगी जो आमनू होगा या मोमिनीन होंगे। जो लोग इस बात को सुनकर चूं चाँ और आगे से बातें करें और ये कहें कैसे होता है, ये ज़्यादती है, ये आज के दौर में हमें क्या बना रहे हैं, तो फिर उनके लिए ज़रूरत इस मौजू पे बात करने की नहीं है कि लिबास कैसे पहनो, नज़रें कहाँ झुकाओ, क्या करो, बल्कि उसकी जवाब क्या है कि लिल मोमिनीन, उनके ईमान की फ़िक्र करें। सच्चा ईमान आता है तो इंसान को अपनी गलतियाँ दिखती हैं, और ईमान रुखसत होता है ना तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की गलतियाँ दिखती हैं, शरीयत पे एतराज़ उठता है, ज़ुबान खुलती है। और ऐसे लोग इस तरह की बातें कर कर फिर असल में अपने गिल्ट को दूर करते हैं कि अल्लाह ने वो शरीयत दी ही नहीं है जिस पे अमल किया जा सके, तो लिहाजा हम तो इस शरीयत पे अमल करने की पोजीशन में नहीं है। तो सच्चा ईमान इन सारी बातों को मानने पर इंसान को तैयार कर देता है। फिर अगली बात है कि यगुद्दू, यगुद्दू का लफ्ज़ गैन दुआ दुआत, उर्दू में आपने गस्से बसर का नाम सुना होगा, ये वही लफ्ज़ है, निकाह, किसी चीज़ को कम करना। लफ्ज़ यगुद्दू के बाद जो मिन आ रहा है ना, ये बड़ा अहम है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ मिन के बहुत सारे मानी होते हैं। मिन बयानिया भी होता है, यानी किसी बात को बयान करता है, और मिन तबईज़ के लिए भी आता है। यहाँ दोनों राय लोगों की मिलती हैं, लेकिन जो अमल देखें, प्रैक्टिकल देखें, तो यहाँ मिन बास का है। मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रों का कुछ हिस्सा नीचे रखें। मतलब क्या है? कुछ वक्त नीचे करें, पहला मानी मिन में, और दूसरा है कि कुछ चीज़ों से। ठीक है, अब ये कुछ वक्त और कुछ चीज़ों को कैसे समझें? मुतलकन यानी कम्प्लीटली कोई मर्द किसी को देखे ना, नज़रें बांधी रखे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, खुद ही टकरें खाएंगे और गिर जाएंगे। दुनिया का निज़ाम ना तो सिर्फ मर्दों के आंखें बंद करके चलने से चल सकता है, ना औरतों के। ठीक है, तो मर्द नज़रें तो उठाएंगे, ड्राइविंग करेंगे तो उठाएंगे, चलेंगे सड़कों पे तो उठाएंगे, तो फिर यहाँ मिन से क्या मुराद है? ख़ास नज़रें। जब किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो नज़र को झुका लो, ये मुराद है। यानी मिन क्या है? दूसरी नज़र। जब किसी लड़के ने किसी को देखा बाहर चलते हुए, औरतें अपने एक्सपोजर के साथ फिरती हैं, किसी ने अपना हुस्न खोला, कोई वैसे ही दिख गया, तो उस वक़्त क्या है कि ना देखो। तो गैर महरम औरतों को ना देखना, फुहश मनाजर को ना देखना, और दूसरे मर्दों के सतर को ना देखना। इन तीन चीज़ों को नोट कर लें। मर्द किस किस चीज़ से नज़रें झुकाएगा? नंबर एक, गैर महरम औरत से। जब नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन झुका ले। पहली नज़र अल्लाह ताला माफ़ कर देता है क्योंकि वो इंसान की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद उसको आगे से आगे नहीं चलाना। दूसरी बात यह है, किस चीज़ से नज़र दूर करें? फुहश मनाजर, गंदी फिल्में, इसमें हर वो गंदगी आ जाती है जिसके समरात फिर बाद में अमल में झलकते हैं। कोई फिल्म, कोई हीरोइन, कोई ऐसी न्यूडिटी, कोई क्लब, कोई बात, और सिर्फ इस एक हुक्म पर अमल से मुआशरे की तत्हीर हो सकती है। सारी फिल्में गंदी बननी बंद हो जाएंगी क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा। मर्द नहीं देख रहे तो औरतें कहाँ देखेंगी? क्या एक फिल्म भी चलेगी? कोई ऐसे मनाजिर, फुखश मनाजिर चलेंगे क्या? आप सिर्फ इस एक हुक्म को लिखिए और मुमकिन बेहयाई की सूरतें दुनिया में जो फैल रही हैं उसको देखिए। एक मर्द जा रहा है, अब इस एकदम सामने क्या कोई चीज़ नज़र पड़ गई, नीचे कर ली। मिसाल है किसी ने ऐड लगाया हुआ बड़ा एक औरत का, अब उसने तो ना औरत को देखना है तो औरत की तस्वीर भी नहीं देखनी। ये तीनों चीज़ें आएंगी, गैर महरम नहीं देखनी तो गैर महरम की तस्वीर नहीं देखी, तो वो ऐड लगाने का मकसद क्या गया? हल हुआ? फ़ायदा ही नहीं, ऐड ज़ाया हो गया। फिल्म बनाने वालों ने इतना पैसा लगा के फिल्म बनाई, अब मर्द जो हैं वो नज़रें झुका के देख रहे हैं, तो क्या काम चलेगा? यहाँ से पहले आप इस मज़मून को थोड़ा सा समझ लें। पर्दा एक सिस्टम का नाम है, पर्दा एक एटीट्यूड का नाम है, पर्दा सेग्रीगेटेड माहौल का नाम है। पर्दा दुनिया में नाफिज हो ही नहीं सकता जब तक इज्तमाही तौर पर औरतों और मर्दों की लिमिटेशंस न रखी जाएं। आज जब ये बातें हम सुनते हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमारे जहनों में जो सवाल आते हैं ना, हाय ये कैसे पॉसिबल है, हाय मेरे तो मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, हाय मेरी तो सास कह देंगी, ये तो ख़ानदान को काटने वाली आ गई, मेरी तो दोस्तें मुझे कह देंगी, मेरे तो फलां कह देंगे, 101 उज़र औरतों के जहनों में आते हैं ना, उसकी वजह ये कि वो सेट माहौल ही नहीं है। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कों पर कोई कह दे कि एक छोटा सा जहाज़ लाते हैं और उसको चलाते हैं, तो आप कहेंगे कैसे होगा, सड़क टूटी हुई है। या यहाँ की कोई बड़ी अच्छी ट्रेन या बस कहेंगे पाकिस्तान की सड़क पे चला दे, तो कहेंगे कैसे चलेगी, उस शहर की तो सड़क टूटी हुई है, दिस एंड दैट। कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो उसको चलाने के लिए रनवे भी चाहिए होता है। इस्लाम ने एक बेहतरीन सिस्टम दिया था, हम मुसलमानों ने जब तक बेस्ट किस्म के रनवेज़ बनाए इस्लाम के इजहार के लिए, ये बातें नामुमकिन थी ना मुश्किल थी, बल्कि ये सब कुछ हुआ और हो के देखा। बहुत दूर तो हम भी नहीं गए अभी। 19वीं सेंचुरी का शुरू आप अपनी नानियों, दादियों या उनके बड़ों का देख लीजिए। मर्दान खाने अलग होते थे, जनान खाने अलग होते थे, औरतें घरों में भी रहती थी, मर्द भी रहते थे। आपसे आज से बड़े बड़े ख़ानदान थे, एक एक बाप के साथ साथ बेटे और साथ साथ बेटों के फिर आगे चार चार बच्चे, 40-50 लोग तो एक घर में रहते थे। कोई बहुत बड़े घर भी नहीं थे, लेकिन ज़रा आप घर बनाने के वो स्टाइल सोच लीजिए, हवेलियाँ कैसे थीं, घर में अंदर जाने का हिस्सा मर्दों का क्या, औरतों का क्या, ये एक सोच थी। घर में बाहर से दोनों इकट्ठे आते थे, ये औरतों के गुजरने का रास्ता, ये मर्दों के। शादियां तब भी होती थी, लोग पहनते भी थे, सजते भी थे, उड़ते थे। उस दौर में असल में औरतों को हक दिए गए थे, पहनने का ओढ़ने का, औरतें आज़ादी के साथ ये काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रुझान बदले, तो हमने घर बनाने के स्टाइल सबसे पहले बदले। अब हमारे घर के अंदर क्या करना है, बाहर सड़क पे आपको बड़े बड़े ग्लासेस के अंदर से औरतें चलती फिरती दिखती हैं, जाके देख लें जितने नए बनने वाले घर हैं, फ्रंट सारे उनके ग्लासी हैं। घर के अंदर जब एक औरत दिख रही है तो उसके लिए घर में जाने की किसी को क्या ज़रूरत होगी? फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी शादियों के नक्शे बदल गए, एक हॉल में बिठा देते हैं औरतों मर्दों को, और औरतें बेचारी मुंह बंद करके बैठ जाएं, मर्द किस किस से नज़रें बचाएंगे, क्या होगा? तो ये सिस्टम देने के लिए इस्लाम ने जो खूबसूरत तरीका था कि मर्द नज़रें नीची रखे। और याद रखिए, जिस जगह ये कुरान उतर रहा था, अरब था, गर्मी का मौसम था, बद्दू थे, गैर महज़ब लोग थे, शराब पानी की तरह पीते थे, जिना ऐसे आम था जैसे आज के दौर में वेस्टर्न माहौल में आम है। अल्लाह के नबी ने जो उनका तज़किया किया था उसका हाल पीछे आप सुन चुके हैं इसी सूरत के अंदर, मरसद बिन मरसद के रात की तन्हाई में, चांदनी रात में, दौरे जाहिलियत की महबूबा खुद बुला रही है, अकेले हैं, परदेस है, सफ़र है, इसके बावजूद वहाँ नहीं रुके और वापस आके पूछते हैं कि अगर इजाज़त हो तो मैं निकाह कर लूँ। इसको कहते हैं तज़किया। अल्लाह के नबी ने ये तज़किया लोगों का जब किया तो उसका नतीजा हमने देखा, दुनिया में ये सब कुछ मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ मर्दों को कहकर कि तुम अपनी यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी आँखों को झुका लो कुछ वक्त कुछ चीज़ों से, ख्वाहिश से, जब किसी की तरफ देखने से कोई ख्वाहिश आएगी तो ऐसे ना करो, गंदी नज़रें ना तुम्हारी पड़े। अब आप देखिए कि जब आप किसी औरत को आमतौर पे नहीं देख सकते तो फिर आप अदाकाराओं को कैसे देख सकते हैं, और गैर मुस्लिम औरतों को कैसे देख सकते हैं, कुलीग्स को कैसे देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनियों वालों को कैसे देख सकते हैं, और ख़ूबसूरत चालें चल के दिखाती हुई औरतों को कैसे देख सकते हैं। एक हुक्म पे अमल कीजिए, 70 दरवाज़े बंद हो गए। और क्या ये मुश्किल हुक्म है? नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब ये करोगे तो इसका ला मुहाला नतीजा क्या है, वयहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम। देखिए कितना करीबी ताल्लुक है निगाह और शर्मगाह के, शर्मगाहों की हिफाजत करें। इससे क्या मुराद है? नंबर एक, इसका मानिए इनको नेकेड करने से बचाएं, हिफाजत बामानी ढांपना। और फ़ुरूज फ़र्ज की जमा है, फ़र्ज कहते हैं सुराख को, प्राइवेट पार्ट मुराद है, कि अपनी शर्मगाहों को छुपाओ। बहुत कम लोगों को पता है कि जिस तरह औरत के लिए लिबास पहनने की हदूद है, शफाफ ना हो और वसाफ ना हो, सबक पढ़ाया था आपको सूरत अल-अराफ में, सी थ्रू भी ना हो और इतना इलास्टिसिटी भी ना हो कि जिस्म जगह, सेम यही चीज़ मर्दों के लिए भी है। तो जो मर्द टाइट जीन्स पहनते हैं और ऊपर शर्ट्स भी उनकी पैंट्स के अंदर हैं, क्या वो यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम के इस पहले मानी में आती हैं? मर्द का भी 70 पूरा नहीं होता, मर्द की भी नमाज नहीं होती उस ड्रेस में जो इतना टाइट हो कि जिस्म का एक एक अंग खुल रहा हो और उसके जिस्म के उभार भी दिख रहे हो। आप बताइए, अब इस ड्रेस के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज कैसी होगी? और यहफ़ज़ू का दूसरा मानी क्या, कि इस शर्मगाह को हराम चीज़ों से बचाओ, हराम तरीक़ों से बचाओ, जिना से, लिवातत से, अपनी बीवी के साथ जायज़ ताल्लुक पीरियड्स में करने से, और ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाओ जो तुम्हें इस काम की तरफ मोटिवेट करती हैं। फ़ायदा क्या होगा? ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है। लहुम किसके लिए? नंबर एक उनके दिलों के लिए, ना नज़र उठेगी, ना किसी को देखोगे, ना ऐसे गंदे ख्याल दिल में आएंगे। और जो इसका इलाज करना चाहता है, किसी के अंदर हो सकता है शहवत बहुत हो, गंदे ख्याल आते हैं, एक महीना उसको कह दें कि वीडियोज़, मूवीज़, ऐसी गंदी चीज़ें देखना छोड़ दें, आप देखें अज़्का लहुम, नज़रें पाक हो जाएंगी। दूसरा, इनकी इज़्ज़त के लिए पाक है। बाइज़्ज़त मर्द इतनी गंदी चीज़ें तो नहीं देखते, बाइज़्ज़त मर्द इतने गंदे मनाजिर तो नहीं देख सकते। देखिए अल्लाह ने इंसान के अपने अंदर भी तो कोई रिस्पेक्ट रखी है ना। इस वक्त हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम पूरे दिन की रोशनी में बैठे हुए हैं, हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी हैं, हमें कोई भी आके देखे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी हमारे लिए ऐसा वक्त ना लाए हम इसी हॉल में बैठकर कोई गंदी चीज़ देख रहे होते, अंधेरा कर देते, लाइटें बुझा देते और जो जिसका दिल चाहता देखते। तो क्या यही कैफियत होनी थी दिल की जो इस वक्त कुरान पढ़ के हो रही है? कुरान पढ़ के जो दिलों में मोहब्बत आती है अल्लाह की, क्या वो फिल्म देखने के बाद भी आती है? बाज़ार से गंदी चीज़ें देखकर आने के बाद भी आती है? म्यूज़िक सुनकर भी आती है? ये तो हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, फिर सुनाते हैं इधर दर्द है, इधर तकलीफ़ है, इधर मसले हैं, ये मसला आ गया, अब घर में टूटी लीक कर गई, अब छत चली गई। ये तो अल्लाह ताला शुक्र करें कि हमें पाक करता है, वरना जो हालात हैं आज हमारे मुसलमानों के, इसकी तो बात ही ना कीजिए। और यही है वो आयत जिसने एक मौके पर तारीख में खारीबी जंग जितवा दी थी। मुसलमान जीत रहे थे, दूसरी तरफ से रोमन्स थे वो हार रहे थे। इतनी कोशिशें कर ली कि मुसलमानों को जिहाद से रोक सकें, नहीं रुकते, कहा ये तलवार उठाने से नहीं बाज आएंगे। क्या करो? इनको नफ्स के फितनों में मुब्तला करो। रूम से खूबसूरत औरतें, तवाइफें बुलाई उन्होंने और उनको इन रास्तों पे खड़ा कर दिया जहाँ से मुसलमान सिपाही जाते थे। ये सोचकर कहा कि चलो वो औरतें इनको लुझाएंगी और ये जंग में नहीं जाएंगी, उनके साथ वो वक्त गुजारेंगे। ये खबर मुसलमानों के अमीर को भी मिल गई। उन्होंने साथियों को जमा किया, कहा चलो भाई अल्लाह के बंदो जा रहे हैं ना जिहाद के लिए, आओ ज़रा उसी अल्लाह के कलाम से थोड़ी सी बातें पढ़ दें। उनको यकीन था हम जितना कुरान सुन्नत पर अमल करेंगे हमारी ज़िंदगियों में खैर होगी। कहा अच्छा, यही आयत पढ़ा दी, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दून मिन अबसारिहिम, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी। कहा चलो जी चलो जंग में चलते हैं। वो लड़के जा रहे हैं और वो तवाइफें रास्तों में खड़ी हैं, अपने लाड दिखा रही हैं, नज़र उठाई नहीं देखी। यहफ़ज़ु मिन फ़ुरूजिहिम से पहले उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम के ज़रिए सीधे गए जंग में, लड़े जीत के आ गए। जब जंग जीती तो वही तवाइफों का गिरोह मुसलमानों के अमीर के पास आया, कहने लगी कि ये बताएं आज तक कोई हमारे हुसन से बच के नहीं गया, आपने अपने साथियों की कैसी तरबियत की है, इन्होंने तुम्हारी तरफ नज़र नहीं उठाई। कहा मैंने क्या करनी है? अच्छा क्या, बस आज कुरान की एक आयत पढ़ाई थी, शायद उस पर अमल कर लिया होगा। कौन सी आयत? यही आयत का। अच्छा, तो अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तवायफों का गिरोह मुसलमान हो गया। कि ये इस्लाम कितना खूबसूरत है, जिसकी एक आयत पर अमल ने हमारा इतना बड़ा फितना ख़त्म कर दिया, तो फिर इसके अंदर खैर कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, मेरा तो ख्याल है कि अगर मर्द सिर्फ इस पे अमल कर लें तो औरतें नंगी भी फिरेंगी तो मर्दों को परवाह नहीं। सिर्फ अगर मर्द पर्दा कर लें ना, मर्द अपनी नज़रों की हिफाजत कर लें, तो जिना, बेहयाई, फैशन और मिक्स गैदरिंग्स ये चलेंगी नहीं। आप सोचिए ना, इमेजिनेशन में लाए, एक मिक्स गैदरिंग है, औरतें खूब लच बच के आई हैं, जितने मर्द हैं माशाल्लाह वो मोमिन है, और जो अंदर आता है साथ ही ऐसे नज़रें झुका के बैठ जाता है, दूसरा आता है ऐसे चुप करके राउंड टेबल पे बैठता, हो सकता है उधर को बैठी हो। अब वो खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगी बेगम, कि ये मैं किस मौलवी के सामने बैठ गई हूँ। खैर, वो उठ के वहाँ से खिसकेंगी, दूसरे मेज़ पे जाएंगी, वहाँ फिर कोई मौलवी साहब उनको देख के साथ ही नज़रें पीछे कर लेंगे। आप देखिए, अगली दफ़ा उस महफिल में वो आके उस मेज़ पे नहीं बैठेंगी। बिलीव मी, बिलीव मी, अगर हम मुसलमानों को अपने दीन की सच्चाई का यकीन हो जाए, एक साल पूरी दुनिया से फुहश, करप्शन, गंदगी, मिक्सिंग सब ख़त्म, सिर्फ एक आयत पे अमल करने में। और आपको पता है कि ये है जिना से रोकने का दरवाज़ा। कभी किसी से जिना हुआ कि उसको देखा ना हो, कभी कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ उसको देखे बगैर, दरवाज़ा कहाँ से खुलता है, फ्लड्स कहाँ से शुरू होते हैं। चले आप सोचें, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, एक लड़की के एक लड़के से मोहब्बत हो ही जाती है। आप कहते हैं जी हो जाती है, पहले कजन्स में होती थी, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से होती है। कैसे होती है? यहुद्दुमिन अबसारिम, की मौजूदगी में मोहब्बत होगी तो कैसे होगी? इस पर एक बड़ा अच्छा क्लिप मेरी आंखों में आ जाता है, खालिद यासिन साहब का, वीडियोस हैं उनकी, तो वो बता रहे थे कि नमाज कैसे बेहयाई से रोकती है ना, इन्न सलात तनहा अनिल फख्शा वल मुनकर। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अपने एक्शंस के साथ करते हैं, लेकिन उसका खुलासा ये है कि एक लड़का खड़ा है, मुसलमान है, और उसकी साथ गर्लफ्रेंड है, वो उससे आती है, बात करती है, आई लव यू हबी हनी हनी कर करा के, तो एकदम वो कर, ओह टाइम टू गो, इज़ ज़ोहर टाइम, अच्छा हनी तुम इधर बैठो मैं भी आता हूँ, अच्छा भी जाती है, और वो चला गया, 15 मिनट कह के गया, 15-20 मिनट से ज़्यादा लग गया। खैर वो आया, थोड़ा सा उसका मूड बिगड़ा हुआ था, खैर थोड़ी देर बाद उसने उसको कहा नो नो मुझे पढ़ना है, ये फरीज़ है, नमाज़ पढ़ी है। थोड़ी देर गुजरी, अभी वो उससे फिर फ्रैंक होने की कोशिश में, ओह टाइम टू से, और होंगी भी सर्दियाँ जो फ़ौरन फ़ौरन नमाजें हो रही हैं, ओह आई हैव टू गो, मुझे नमाज के लिए, वट डज़ इट मीन, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो? खैर कहता नहीं मुझे जाना है, बिकॉज आई एम मुस्लिम, मुझे तो पढ़नी है नमाज। वो नमाज़ पढ़ने गया, नमाज पढ़ के सिर की आ गया। अब जब पास आया, वो फिर दोबारा उसके पास आया, थोड़ी देर बातचीत की, मगरिब का वक्त हो गया, वो कहती है पीछे जाओ मेरी जान, छोड़ो, वो उसको छोड़ के चली गई। तुम्हारे से मैंने क्या रोमांस करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो तुम बाहर जा रहे हो। ये है इन सलात तनहा अनिल फख्शा वल मुनकर। कोई गंदगी की हालत में रह सकता है अगर वो 5 वक्त नमाजी हो, चाहे वो जायज़ नापाकी हो या नाजायज़ नापाकी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो आज हमने खुद अपने ऊपर मुश्किलात डाली हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और उसकी हदूद भी होती हैं, होती है ना, आपका घर है तो उसकी बाउंड्री वॉल्स भी मौजूद हैं। अल्लाह की हदें उसकी हराम करता चीज़ें हैं, जो इनके करीब भी चला गया वो ज़रूर हराम में पड़ जाएगा। सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ चुके हैं, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसा सबीला, जिना के करीब ना जाओ क्योंकि ये गंदगी भी है और बुरा रास्ता भी है। तो याद रखिए, एक भटकी हुई नज़र जिना के करीब ले जाती है। आज के दौर में तो ये और भी आसान हो जाता है ना, कहते हैं कि व्हाट द आइज एडमायर्स द हार्ट डिज़ायर्स, जिस चीज़ को आंखें एडमायर करती हैं, ओ व्हाट अ स्वीट और लवली और फुला, तो दिल उसकी डिज़ायर करने लगता है। जिना की सजा से बचने के लिए इस निगाह को इंसान बचा ले जो बाद में उसको भटकाता है। एक रिवायत में आता है कि निगाह इबलीस के तीरों में से एक तीर है, यानी शैतान का वार बंदे पर बद नज़री से होता है, वो कामयाब हो जाता है, जहर की तरह फैल जाता है। मुसनद अहमद में और तिर्मिज़ी में रिवायत है हज़रत अली से कि पहली नज़र के पीछे दूसरी ना डालना, क्योंकि दोबारा ना देखना जो ये गस्से बसर है। तो गोया कि क्या पता चला कि अपनी मर्ज़ी से आप दूसरों को नहीं देख सकते। और आप देखिएगा कि औरतें जितना मर्ज़ी बने ठने, अगर मर्द इस अमल कर लेंगे तो उनकी कोशिशें नाकाम होगी। और कुछ औरतें तो इतनी बदबخت हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगाई हुई है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस्म की आराइश, जिस्म की ज़िबाइश, चंद मिनट के स्लॉट के लिए वो कितनी प्रैक्टिस करवाती हैं, क्या कुछ जिस्म के अंदर तब्दीलियां करवाई जाती हैं। इस पे तो अगर आप सुने तो हैरान हो जाएं कि किस किस हद तक, यानी आज औरतें खुद को खूबसूरत करने के लिए अपने जिस्म में सिलिकॉन के बैग्स रखवाती हैं, ताकि हमारा सीना उभरा हुआ लगे। एक सिलिकॉन फटे तो वहीं उनकी जान चली जाएगी, हराम है ये। मैंने तो इस दफा अपनी इस ट्रिप में एक स्कॉलर के से ये भी सुन लिया कि अपने फिगर को बड़ा करने के लिए अगर औरतें अपने कोई ऐसी अंडरगारमेंट्स पहनती हैं जिसे उभार ज्यादा लगे, ये भी अलाउड नहीं है। उन्होंने तो हराम कहा था, मैं तो अलाउड नहीं कह रही हूँ। ऊंची एड़ी वाली जूती पहन के बाहर जाना, कहते हैं ये माइलात ही ममीलात में आता है। ये मैं आपको आलिम की बातें बता रही हूँ, ये अभी रिसेंटली इस यूएई के ट्रिप में मैंने सुनी है बातें, कि ऊंची एड़ी की जूती पहन के बाहर फिरना ये माइलातुन ममीलातुन में आता है। सर के ऊपर जूड़ा बना के जाना माइलातुन ममीलातुन में आता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें करना, अब एक आम सीधी सादी घर की औरत तो ये कुछ कर नहीं सकती। नुकसान क्या होता है कि औरतें अपने आप को पीछे कर लेती हैं। अब ये तो मर्द की बात थी, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो नोट कर लीजिए, फिर हम औरतों के इशू पे चलेंगे क्योंकि इसमें तरतीब यही बेहतर है। पहली बात है कि एक मर्द अपनी बीवी के सिवा बाकी औरतों को उस तरह नहीं देख सकता। देखिए, नंबर एक महरम रिश्तेदार और एक है बीवी, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस नज़र से बीवी को देख सकता है, उस नज़र से बहन को नहीं देख सकता, माँ को नहीं देख सकता, खाला को नहीं देख सकता, ठीक है। तीसरी किस्म की औरतें गैर महरम हैं, उनके लिए तो बिल्कुल अलग है। बीवी अल्लाह ने आपके लिए रखी है, अंतुम लिबासुल्लहुन्न वहुन्न लिबासुल्लकुम, दैट्स इट, वो आपका लिबास है, वो आपके लिबास हैं, ख़त्म। एक शौहर बीवी का झगड़ा था तो शौहर से किसी ने कुरेदने की कोशिश की, अच्छा क्या खराबी है उसमें, तो गुस्से में आ गए, कहने लगे वो मेरा लिबास है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, मैं अपने लिबास की बुराइयाँ बताऊँ, मैं तुम्हें उसकी बुराई नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा जहाँ से भी किसी मर्द की नज़र उठती है, हदीस सुन लीजिए, मेरा हाल इस एक हदीस से ही सारी बात पूरी हो जाती है, ये सही बुखारी की रिवायत है, जिसके बारे में किसी के दिल में शक भी नहीं आ सकता कि ये ठीक ना होगा। खुलासा बताऊंगी आपको, आपने फरमाया कि इंसान अपने तमाम खवास से जिना करता है। खवास के ऑर्गन्स, हिस, जैसे आंखें कान जो भी चीज़ें फील करती हैं। देखना आंखों का जिना है, ये कौन सा देखना है अब, लस्ट का देखना, ख्वाहिश के साथ देखना, पट पट आंखें खोल के देख लेना। लगावट की बातचीत जुबान का जिना है, ये क्या है, ये मीठी मीठी बातें हैं, लव स्टोरीज हैं, आई लव यू है, आई मिस यू है, और न जाने कितना कुछ इसमें शेरों और कार्ड्स की सूरत में और मैसेजेस की सूरत में हो जाता है। आवाज़ से लज्जत लेना कानों का जिना है, जब किसी के मीठे बोल सुनता है इंसान तो उससे कानों में जो लज्जत है उसको कानों का जिना कहा गया। हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना हाथ और पाँव का जिना है, यानी चल के गए डेटिंग मिल रहे हैं, ये मुलाकात हो रही है तो ये पाँव का जिना है। छू लिया अगर हाथ से हाथ को तो ये हाथों का जिना है। फरमाए बदकारी की ये सारी तमहीदें जब पूरी हो जाती हैं तब शर्मगाहें या तो इसकी तकमील कर देती हैं या तकमील करने से रह जाती हैं। बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत बुरैदा से रिवायत है, अल्लाह नबी सल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र न डालना, पहली नज़र तो मुआफ़ है मगर दूसरी मुआफ़ नहीं। कई जालिम कहते हैं हम पहली नहीं वापस आने देते, हम वही लंबी कर लेते हैं, तो यह खुद दुमिन अबसारी है, पहली को भी कहा था कि छोटा कर दो, इसको पीछे कर लो। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि अगर अचानक नज़र पड़ जाए तो क्या करूं? फरमाया फौरन निगाह फेर लो या नीची कर लो। मुस्लिम, अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये इरशाद, यानी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है कि निगाह इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जो शख्स मुझसे डरकर इसको छोड़ देगा मैं इसके बदले इसे ऐसा ईमान दूंगा जिसकी हलावत वो अपने दिल में पाएगा, तबरानी की रिवायत है। और यकीन कीजिए, जो मर्द अपनी नज़रों को पाक रखते हैं उनके दिल में ही ईमान आता है, और उनको ही अपनी बीवी अच्छी लगती है जिनको दूसरों की बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अबू उमामा की रिवायत है, जिस मुसलमान की निगाह किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो निगाह हटा ले तो अल्लाह ताला इसकी इबादत में लुत्फ और लज्जत पैदा कर देता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप कहते हैं मेरे शौहर मेरी बात नहीं मानते, आपका 10 साल का बेटा तो आपकी मानता है, उसके दिल में ईमान डालें। ये जो घंटों टीवी के सामने बिठा के आदि कर देते हैं ना, चलें कार्टून दिखाएं या फिल्में दिखाएं, होती तो औरतें और मर्द ही हैं ना, लड़कियां लड़के ही हैं, बच्चे बच्ची बच्चियां देख रहे होते हैं, बड़े बड़ी औरतें देखते हैं, इबादत का लुज्व कहाँ है। कई माएँ गिला करती हैं बच्चे नमाज फट से पढ़ के आ जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन मज़ा नहीं लेते। क्यों मज़ा लें, कैसे मज़ा लें, सुरूर ही नहीं आता उस नमाज में जिसकी निगाह भटकी होगी। इसी तरह आपको पता है कि हजरत अलविदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम के साथ आपके चचाजत भाई फजल बिन अब्बास थे, जो उस वक्त नौजवान लड़के थे, मशरे हराम से वापसी के वक्त अल्लाह के नबी के साथ ऊँट पर सवार थे। रास्ते में जब औरतें गुजरने लगीं तो फजल इनकी तरफ देखने लगे, आदत भी होती है और बंदा बेसाख्ता तौर पर भी देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह पर हाथ रखा और इसे दूसरी तरफ फेर दिया, यानी यहाँ से घुमा के उनका सर इधर किया और कहा कि इस तरफ ना देखो। इसी हजरत अलविदा के मौके पे कबीला खसम की एक औरत रास्ते में रास्ता रोककर आपसे हज के बारे में मसला पूछने लगी और फजल बिन अब्बास उस पर नजरें गाड़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने इनका मुंह पकड़ा और दूसरी तरफ कर दिया। ये बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिजी की रिवायत है। बात वाज़े, इतने से कम अज़ कम हमें ये बात तो समझ आ गई कि मर्दों के लिए ये क्या काफ़ी है, और लिहाजा इससे आप देखिए कि ये बात समझ आ जाती है हकीकी ज़रूरत के तहत देख सकते हैं हकी कौन सी ज़रूरतें हैं जिसमें एक मर्द देख सकता है। नंबर एक, किसी औरत से निकाह करना चाहता हो मर्द, तो देखने की इजाज़त से ज़्यादा बल्कि पसंदीदा भी है। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैंने एक जगह निकाह का पैगाम भेजा, अल्लाह के नबी ने पूछा तुमने लड़की को देख भी लिया? मैंने कहा नहीं देखा, तो आपने फरमाया कि इसे देख लो। इस तरह ज़्यादा तवक्को की जाती है कि तुम्हारे दरमियान मुवाफ़क़त होगी। अहमद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और दारमी की रिवायत है। अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स ने किसी शादी का पैगाम दिया, नबी सल्लम ने फरमाया लड़की को देख लो क्योंकि अनसार की आंखों में कुछ ख़राबी होती है। ये मुस्लिम, नसाई और अहमद की रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश रखे तो हत्तुल इम्कान उसे देख कर ही इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इस औरत में कोई ऐसी खूबी है जो इसके साथ निकाह की तरफ रगबत दिलवाने वाली हो। अहमद, अबू दाऊद। तो अब ज़ाहिर है कि जब वो ऐसी हालत में देखेगा तो माँ बहन की नज़र से तो नहीं देखेगा ना, बीवी की नज़र से ही देखेगा, तो इसकी रुख्सत मौजूद है। इसी तरह मुसनद अहमद में रिवायत में आता है कि फ़ला जुनाह अलई, यानी लड़की को देख लेने में कोई मज़ायका नहीं है। इस सारी बातों को भी समझ लीजिए कि ये कैसे होगा, अगर एक मर्द खुद शादी कर रहा है तो औरत को कैसे देखेगा, और यहाँ इन रिवायतों से क्या पता चल रहा है। आपने कहा उसको देखा है, नहीं देखा, पर्दा करती थी तो नहीं देखा था ना। जो लड़कियां औरतें पहले ही मुंह खोल के देख रही हैं उनको देखने में किसी को क्या रुकावट होती है, तो औरतें पर्दा करती थी। जहां वो आयतें आएंगी इंशाल्लाह हम सारे दलाइल जमा करेंगे उसके, लेकिन यहां ये समझ लीजिए कि एक मर्द का ये हक बनता है कि वो ऐसे वक्त में औरत को देख ले, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा फैसला होता है, बाद में लड़के को लड़की पसंद ना आए, लड़की को लड़का पसंद ना आए, लेकिन ये सब कब होगा, मंगनी होने के बाद? नहीं, ये मसला तो आगे खुद भी खुल जाएगा कि जिन रिश्तों की लिस्ट अल्लाह ने दी है जिनके सामने खुल सकते हैं उसमें ना फियोंसी है ना कज़न्स हैं और ना उसमें बहनोई हैं और ना उसके अंदर देवर जेठ हैं। लेकिन ये मामला कब होगा, जब डिसाइड करना है। डिसाइड होने के बाद अब आप ये नहीं कर सकते कि हम ज़रा मज़ीद तहकीकात कर लें और अब साथ रह लें। इसी से लोगों ने आज फिर मंगनी से पहले फियोंसी को पता नहीं कहाँ का महरम बना के पेश कर दिया। तो ये सिर्फ़ एक नज़र है, देखना कैसे चाहिए, भोलपने में। आजकल तो पहले ही पता चल जाता है, माँ बहनें पहले ही देख लेती हैं, उनको पता होता है लड़की कैसी है, इर्द गिर्द की बातें भी चेक कर ली, माहौल भी मिलता है, हालात भी मिलते हैं। लड़के को हाँ करने से पहले एक नज़र दिखा दें और लड़की को भी दिखा दें, ये तो पसंदीदा है। बाज़ अगर यहाँ तक देखा गया जहालत से कि लड़की को देखने की जब लोगों ने बात की दीनदार घर में, तो उन्होंने इसलिए रिश्ता नहीं किया कि लड़का कहता है मैंने लड़की देखनी है तो हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करते। ये बिल्कुल सही वाक्या हुआ था, मेरा ख्याल अमेरिका में किसी ने मेरे साथ शेयर की थी ये बात कि हैं दीनदार वो लोग, लेकिन उन्होंने लड़की को दिखाने की कोशिश की तो उससे मामला बिगड़ गया। दूसरी बात, कहाँ देख सकता है कोई मर्द किसी औरत को? तफ्तीश के मौके पर, कोई जुर्म हो गया है, किसी औरत पर शुबा है, अदालत में गवाही के मौके पर, काजी का किसी गवाह औरत को देखना, और इसी तरह इलाज के लिए तबीब का मरीज़ा को देखना। लेकिन याद रखिए, वो बीमारियां जिसके इलाज में औरतों का इलाज औरतें कर सकती हैं, हत्तुल वसा वहाँ औरतों को औरतों के पास जाना चाहिए। आज ये भी एक जुल्म की हद तक बात स्टेटस हो गई, स्टेटस का जरिया बन गई कि औरतें मर्दों के पास जाके इलाज करा रही हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह माफ़ करे जब वो डिलीवरी करवाती हैं, और उस मर्द का ही तकवा होगा कि फिर वो कैसे बचेगा। तो औरत अपने इलाज के लिए बेस्ट थिंग है कि औरत को चूज़ करे, कोई जान पे जाने वाली तकलीफ है, दिल की बीमारी है कि कोई औरत कर ही नहीं सकती, तो ये और बात है। आम हालात में पसंदीदा ये नहीं है, इसीलिए इस चीज़ से इंसान को अपने आप को रोकना चाहिए। इसी तरह आप देखिए कि ये जो मैंने शुरू में तीन चीज़ें आपको बताई थी ना, कि मर्द गैर महरम औरतों को ना देखें, फुहश मनाजर को ना देखें, बस उसमें आखिरी चीज़ रह गई है कि मर्द दूसरे मर्दों का सतर भी ना देखें। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गस्से बसर में ये भी है कि मर्द दूसरे मर्दों का सतर ना देखे और औरत औरतों का सतर ना देखे। अबू दाऊद की रिवायत में, किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान पर निगाह ना डालो। अब मर्द मर्दों के साथ कैसे हो, या फिर मैं तकलीफ़ के साथ कहूँगी तालीमी इदारे। मेरा ख्याल है कि हाई स्कूल तक के स्कूलों में जो बच्चों के टॉयलेट्स होते हैं, एक ही बड़े कमरे के अंदर कई डिफरेंट टॉयलेट्स होते हैं। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अमेरिका का ये बात सुनी है, बीच में आड़ भी नहीं होती और लड़के दूसरे लड़कों के सामने फारिग हो रहे होते हैं। बस ऐसे हॉस्टल्स भी हैं कि जहाँ शावर लेने की जगह में एक एक कमरे के अंदर चार चार शावर लगे होते हैं, लोग एक साथ शावर ले रहे होते हैं। इसी से फिर होमोसेक्सुअलिटी, इसी से लेस्बियनिज्म है। आप देखिए कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर वो दुरुस्त नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि मर्द का मर्द से सतर क्या है, तो घुटनों से नाफ तक, घुटने नीज से लेकर नाफ पेट तक, यही औरत का औरत से, यही मर्द का मर्द से, हराम है दूसरे का देखना, बगैर वजह के देख ही नहीं सकते। रह गई बात औरत का ऊपर से हिस्सा, यानी नाफ से ऊपर का, बाज़ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, मसलन एक औरत है दूध पिला रही है, बावजूद कोशिश के थोड़ा सा किसी औरत के सामने खुल गया, तो मजबूरी की हालत में इतना से इस्तिस्ना रखा है कि ज़रूरतन अगर इससे ऊपर खुल जाए तो और बात है, लेकिन पेट से लेकर नाफ तक, रान तक, कोई चीज़ औरत औरत की नहीं देख सकती। साथ ही इसको देख लें, अब औरतें वैक्सिंग कराती हैं, पूरे बॉडी की वैक्सिंग, फुल आर्म फुल बॉडी, गलत बात है। और किसी से बात की तो नहीं कहा कि बच्चा भी तो पैदा करते हैं, उस वक्त भी तो फिर दूसरी औरतें देखते हैं। तो आप देखिए बच्चे के पैदा करने में वो तो औरत खुद नहीं कर सकती, लेकिन अपनी सफाई तो औरत खुद भी कर सकती है। अल्लाह ने इतने इंतजाम दिए हैं, क्या मुश्किल है? और क्या हम अल्लाह के लिए इतनी भी नहीं बात ले सकते? और अल्लाह माफ़ करे, ये होता भी तब है जब नज़ाकत आती है, जब पैसे होते हैं। घरों में औरतें आती हैं पूरे, और वो सारे गली में फिरती हैं, इधर की बातें जाके उधर सुनाती हैं, उधर की बातें उधर सुनाती हैं। तो औरत के लिए, औरत के सामने अपने सतर को खोलना जायज़ नहीं है। कोई डॉक्टर की ऐसी मजबूरी है वो एक और बात है, इस्तिस्ना में तो बहरहाल ये सब कुछ खुल जाता है। अब ये सारी बातों को देखिए कि ये सब कुछ है। एक बात जो बहुत ही अहम है, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला शरा की बात में नहीं शर्माता, मर्द क्या अपनी बीवी के सामने खुल सकता है, या बीवी मर्द के सामने खुल सकती है? तो उसका जवाब तो सूरह बकरा में गुजर चुका कि अंतुम लिबासुल्लहुन्न व हुन्ना लिबासुल्लकुम। उसके बारे में भी एक्सट्रीम पेश कर दी गई, जिसकी वजह से कभी हज़रत फातिमा की और हज़रत अली की बातें और कभी नबी सल्लम की बयान की जाती हैं, तो ये हद से गुजरने वाली बात है। याद रखिए कि जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं, अगर एक औरत अपने मर्द और मर्द अपने औरत को मुतमईन नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा डर होते हैं जिना और बुराई में पड़ने के, ख़ास तौर पे जब दीन के नाम पे फिर हम बहुत ही बेढंगे और इस तरह के हो जाएं कि जायज़ चीज़ों को भी पीछे कर दें। घर में आए तो सर से दुपट्टा ही ना तुम्हारा उतरा हो, बाथरूम में भी जा रही हो तो दुपट्टा, और ये बाज़ दफ़ा दीनदारों के मुँह से सुनी हुई बातें, तो ऐसी बात नहीं है। बस लोग इस पे एक रिवायत भी पेश करते हैं कि जो अपने आप को खोल देता है गोया कि वो एक गधा है जो गधे की तरह पड़ा, तो ये हदीसें रिवायतें ज़ईफ़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी पता चलता है और अहादीस से भी पता चलता है। तन्हाई में बरहना रह सकता है कि नहीं मर्द, मर्द या औरत दोनों? तो वही बात है कि फरमाया कि खबरदार कभी नंगे ना रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जो कभी तुमसे जुदा नहीं होते। कौन? खैर और रहमत के फरिश्ते, सिवाय उस वक्त के जब तुम रफ़ा हाजत करते हो, टॉयलेट यूज़ करते हो, या अपनी बीवियों के पास जाते हो। बस इनसे शर्म करो और इनका एहतराम मलहूज़ रखो। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। एक और रिवायत है, अपने सतर को अपनी बीवी और लौंडी के सिवा हर एक से महफूज रखो। साहिल ने पूछा कि जब हम अकेले हों, तन्हाई में हों, यानी कपड़े उतार के बैठ जाएं तन्हाई में, तो फरमाया फल्लाहु तबारक व तआला अहक्कु, अल्लाह तबारक ताला इसका ज़्यादा हकदार है कि उससे शर्म की जाए। यह अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। अब इसके साथ हम अगली आयत को ले लेते हैं और बाकी मसाइल इंशाल्लाह उसके अंदर हमें मिल जाएगा।